नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से नीति वचन नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस पुस्तक के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अपने कार्यों को करते हुए प्रभु के निकटता में रहकर कुशल पूर्वक हैं और फिर आज परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नियमित श्रोताओं का और इसके साथ अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से नीति वचन नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि परमेश्वर 7 ऐसी बातों से घृणा करता है और जिसमें हमने देखा, पहला, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, और तब हमने देखा दूसरा, झूठ बोलने वाली जीभ, और तीसरा, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, और तब हमने देखा चौथा, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, और पांचवा, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, और छठवां, झूठ बोलने वाला साक्षी अर्थात गवाह, सातवां, भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। ये 7 बातें हैं जिससे परमेश्वर घृणा करता है और इस विषय को हमने देखा है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे योना 4 के पाप के विरुद्ध में चेतावनी। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय हमारी आपसे विनती है प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए जो आपके वचन को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं, आप प्रत्येक के आत्मिक आँखों को, कानों को, हृदय और विचारों को खोल दीजिए ताकि जब आपके वचन को सुने निश्चित रूप से आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए। हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो अपने जीवन में निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, बीमार अवस्था में हैं या अपने नौकरी की तलाश में हैं, जीवन साथी की तलाश में हैं या किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं, आप उन सब की सहायता करें। हम धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए अब हम आगे बढ़ेंगे और आज के अध्ययन को हम नीति वचन की पुस्तक उसके 23 पद से आरंभ करेंगे। आप मेरे साथ निकाल लीजिए नीति वचन की पुस्तक 6 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। अब वह हमारे आज के पाप का उल्लेख करता है, व्यभिचार का पाप। यहाँ फिर एक पराई स्त्री वेश्या से सावधान रहने की शिक्षा है। यह युवाओं के लिए सबसे अधिक घातक है। यह आज का सबसे बड़ा पाप है। इसके कारण नष्ट हुए जीवनों को गिनना असंभव है। इसके कारण कितने विवाह टूटे हैं, सिनेमा, पुस्तकें, गाने आदि सब इसी विषय पर हैं। विवाहित जीवन में तीसरे के आ जाने से विवाह का नाश हो जाता है। नीति वचन में इस विषय पर बहुत अधिक चर्चा की गई है। मेरे मित्रों, आज जब हम समाचार पत्रों को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें इन्हीं बातों को पढ़ने के लिए मिलता है। कई परिवार टूट गए हैं, कई बच्चे बर्बाद हो गए हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपका परिवार और आपके बच्चे सुरक्षित रहें। तो आइए हम आगे पढ़ें नीति वचन 6 अध्याय उसके 24 और 25 पद में, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए, उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर, वह तुझे अपने कटाच से फंसाने न पाए। ध्यान दें, उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर। हमने अभी अभी देखा है नीति वचन 4 अध्याय उसके 23 पद में, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जी हाँ, यहाँ ध्यान दे कि उसकी चिकनी चुपड़ी बातें, उसकी सुंदरता, उसके कटाक्ष के विरुद्ध चेतावनी दी गई है। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 27 और 28 पद में यीशु ने कहा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था वे विचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। पाप का आरंभ मन से ही होता है। मनुष्य पहले मन में विचार करता है, योजना बनाता है, उसके बाद क्रिया रूप में उसे लाता है। और इसी कारण प्रभु यीशु कहते हैं कि जो कोई किसी स्त्री के बारे में मन में ही सोचे या कुदृष्टि डाले तो उसने व्यभिचार कर लिया। नीति वचन 6 उसके 26 पद में लिखा है, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। इसी कारण कितने जीवन नष्ट हुए हैं। आज किसी भी कार्यालय में पत्नियों को गिना जाए तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अवैध यौनाचार के कारण कितने लोगों को धमकी दी जाती है। हाल ही में एक डॉक्टर के जीवन का भेद खुला है। उसके दो परिवार हैं। सब तो यही सोचते थे कि वह एक सदाचारी मनुष्य है। सेवकों के जीवन में भी ऐसा ही हुआ है। इसका आरंभ कैसे होता है? प्रभु यीशु ने कहा कि इसका आरंभ मन से होता है। उसने हमें बनाया है, इसलिए वह हमें जानता है। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर। अब वह कुछ स्पष्ट प्रश्न पूछता है। हम नीति वचन 6 उसके 27 पद में पढ़ते हैं, क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े न जले? इसका उत्तर स्पष्ट है कि यदि आप आग से खेलेंगे तो आप निश्चय ही जलेंगे, यदि आप पाप से खेलेंगे तो आप निश्चय ही पाप में डूबते जाएंगे। नीति वचन 6 उसके 28 पद में लिखा है, क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव न झुलसे? कुछ उन्मादी ऐसा करके अपने पांव को जला लेते हैं। नीति वचन 6 के 29 पद में लिखा है, जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से न बचेगा। व्यभिचारी के पास अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए कोई प्रतिवाद नहीं है। अब एक उदाहरण देखें। नीति वचन 6 के 30 पद में लिखा है, जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते। ध्यान दीजिए, भूखा मनुष्य चोरी करे तो हम उससे सहानुभूति प्रकट करते हैं, आप उसको दंड नहीं देंगे, आप उसकी सहायता करना चाहेंगे। जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे तो उसको लोग तुच्छ नहीं जानते, लेकिन यदि वह अपने कार्य को करने के लिए, अपने आप को धनी बनाने के लिए चोरी करे तो लोग उसे दंड देंगे। इतना ही नहीं, हमारे पारिवारिक जीवन के साथ भी ऐसा ही है। आपकी पत्नी है और आप दूसरी स्त्री के साथ संबंध रखते हैं तो निश्चय ही आप इसके दंड के भागी हैं। नीति वचन 6 उसके 31 पद में लिखा है, तो भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। वह अपना घर बंधक रखकर क्षतिपूर्ति करेगा। नीतिवचन 6 उसके 32 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु जो पर स्त्री गमन करता है वह निरा निर्बुद्ध है। जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वह ऐसा ही करता है। मेरे प्रियो, हमारे पड़ोस में एक मनुष्य किसी के घर में गया और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। क्यों? क्योंकि मृतक ने अपनी वासना के कारण उसका परिवार नष्ट कर दिया था। अपराधी को मुक्त कर दिया गया। जो पर स्त्री गमन करता है वह निरा निर्बुद्धि है। जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है। आज आप जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आप में से कितने लोग इस प्रकार का जीवन हो सकता है जी रहे हैं, लेकिन आपके लिए मौका है कि आप इन सारी बुरी बातों से, बुरी आदतों से पीछे हट जाएं। अभी भी आपके पास में मौका है ताकि आप परिवार को और अपने आप को नाश होने से बचा लें। आज बच्चे रो रहे हैं, पत्नियां रो रही हैं, पति रो रहे हैं। क्यों? सिर्फ इस समस्या के कारण। नीति वचन 6 उसके 33 पद में लिखा है, उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसकी नाम धराई कभी ना मिटेगी। वे विचार मनुष्य की आत्मा को आज जीवन क्षतिग्रस्त कर देता है। मैं एक ऐसे पुरुष को जानता हूं जिसका पराय स्त्री से संबंध था, परंतु वह पश्चाताप करके लौट आया और उसकी पत्नी ने उसे भी क्षमा कर दिया। मैं उसके परिवार को जानता हूं और कह सकता हूं कि वह परिवार एक सुखी परिवार नहीं है। वे विचार का दाग मिटाया नहीं जा सकता है। ऐसा करने वाला निर्बुद्धि है। आपका जीवन तो नाश होगा ही, आपका परिवार भी नष्ट हो जाएगा। मेरे प्रियो, इससे पहले कि आप बहुत आगे बढ़ जाएं, इससे पहले कि आपसे बहुत देर हो जाए, आप ठहर करके सोचें, कहीं आप वही निर्बुद्धि मनुष्य तो नहीं है। नीतिवचन 6 उसके 34 और 35 पद में लिखा है, क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है और पलटा लेने के दिन वह बहुत कोमलता नहीं दिखाता। वह घूस पर दृष्टि न करेगा और चाहे तो उसको बहुत कुछ दे तो भी वह ना मानेगा। ओह, मेरे मित्रों, वे विचार का परिणाम कैसा विनाशकारी होता है। वह अपने आप को नाश करता है और इसके साथ परिवार को और अपने सब लोगों को लेकर के नाश हो जाता है। मेरे प्रियो, हम पराई स्त्री से दूर रहने के बारे में नीति वचन में सुन रहे हैं और अध्याय 7 में भी वही कहा जा रहा है। तो आइए अब हम आगे बढ़ेंगे और अध्याय 7 में देखेंगे। 7:1-4 पद में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा और मेरी शिक्षा को अपनी आँखों की पुतली जान। उनको अपने उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। बुद्धि से कह, तू मेरी बहिन है, और समझ को अपनी साथिन बना। यह कहकर वह परिणाम सुनाता है। तब हम नीति वचन 7:5 में पाते हैं, तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। जी हाँ, वह जीवन से उदाहरण देता है। नीति वचन 7:6-9 पद में आगे लिखा है, मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोके से झांका, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था और उसने उसके घर का मार्ग लिया। उस समय दिन ढल गया और संध्या काल आ गया था, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। यह युवक गलत सड़क पर चल रहा है। तब हम देखते हैं नीति वचन 7:10-14 पद में, और देखो उससे एक स्त्री मिली जिसका वेश वेश्या का सा था, और वह बड़ी धूर्त थी। वह शांति रहित और चंचल थी और अपने घर में न ठहरती थी। कभी वह सड़क में, कभी चौक में पाई जाती थी और एक एक कोने पर वह बाट जोहती थी। तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा और निर्लजता की चेष्टा करके उससे कहा, मुझे मेल बलि चढ़ाने थे और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की हैं। मेरे मित्रों, वह धार्मिक स्त्री है और उसे विश्वास दिलाती है कि वह परमेश्वर के दृष्टि में सही है। मुझे मेल बलि चढ़ाने थे और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की हैं। नीति वचन 7:15 में लिखा है, इसी कारण मैं तुझ से भेंट करने को निकली, मैं तेरे दर्शन की खोजी थी और अभी पाया है। अर्थात मैं जैसे पुरुष के लिए तरसती रही, वह आज मुझे मिल गया है और वह तू ही है। नीति वचन 7:16-20 में लिखा है, मैंने अपने पलंग के बिछौने पर मिस्र के बेल बूटे वाले कपड़े बिछाए हैं। मैंने अपने बिछौने पर गंधरस और दालचीनी छिड़की है। इसलिए अब चल, हम प्रेम से भोर तक जी बहलाते रहें, हम परस्पर की प्रीति से आनंदित रहें, क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, वह दूर देश को चला गया है। वह चांदी की थैली ले गया है और पूर्णमासी को लौट आएगा। वह उसे विश्वास दिलाती है कि उसका पति घर से बाहर विदेश गया है और बहुत दिनों के बाद वह लौटेगा। नीति वचन 7:21-23 पद में हम पढ़ते हैं, ऐसी बातें कह कह कर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। वह तुरंत उसके पीछे हो लिया जैसे बैल कसाई खाने को, या जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूढ़ ताड़ना पाने को जाता है। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े और न जानती हो कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे। मित्रों, यह कैसा दृश्य है एक निर्बुद्धि जवान के लिए। अब चेतावनी है कि हम इससे बचें। नीति वचन 7:24-27 पद में आगे लिखा है, अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर न फिरे और उसकी डगरों में भूल कर न जाना, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं। उसके घात किए हुओं की एक बड़ी संख्या होगी। उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है। मेरे मित्रों, इस चेतावनी को हमें ज्यों का त्यों मानना है। आज इसका हमारे लिए आत्मिक अर्थ भी है। धर्मशास्त्र में आत्मिक व्यभिचार के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। परमेश्वर की प्रजा जब मूर्ति पूजा करने लगी, तब परमेश्वर ने उसे व्यभिचारिणी कहा था। वे मूर्ति पूजा करने के कारण दासत्व में, अर्थात गुलामी में भेजे गए थे। उन्होंने जीवते परमेश्वर का त्याग कर दिया था। वे उसके निष्ठावान नहीं थे। यह आत्मिक व्यभिचार था। आज चारों ओर अनेक धार्मिक पंथ हैं, अनेक धार्मिक मान्यताएं हैं। एक पंथ है जिसका कहना है कि मसीह का अनुसरण ऐसे नहीं करना है जैसे हम करते हैं, और उसी एकमात्र को उद्धारकर्ता मानने की आवश्यकता नहीं है। जो आवश्यक है वह कर्म है जैसे वे करते हैं। मेरे प्रियो, मैं रेडियो पर गलातियों की पत्रिका अध्ययन करवा रहा था कि उद्धार केवल विश्वास से है, इसमें अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बल दे रहा था कि हमें केवल यीशु को ही उद्धारकर्ता मानना है। मुझे अनेकों ने जाने क्या क्या लिखा। एक ने लिखा, आपके अनुसार हमें मूसा की व्यवस्था का त्याग कर देना चाहिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैं कह रहा था कि व्यवस्था के द्वारा उद्धार नहीं है। व्यवस्था तो अच्छी है, परंतु हमारे साथ समस्या है। इस कारण हमारा उद्धार केवल मसीह यीशु ही कर सकता है। जी हाँ, हम स्वयं प्रयास करने की अपेक्षा उसके पास आ जाए तो हमारा उद्धार होगा। किसी ने मुझे लिखा कि मैं गलत हूं, आपको कहना था कि बपतिस्मा लेने के लिए एक विशेष विधि अपनाओ। किसी ने कहा, आपको मुझे बताना था कि किस दल की सदस्यता लूं। और किसी ने कहा कि मुझे मूसा की व्यवस्था पालन की शिक्षा देना चाहिए, क्योंकि मसीह में विश्वास करके भी व्यवस्था पालन आवश्यक है। क्या मैं प्रति उत्तर में कह सकता हूं कि हम विश्वासी मसीह से जुड़े हुए हैं और हमें प्रभु यीशु की आज्ञाओं का पालन करना है। यदि हम उससे प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाएं बोझ नहीं है, तो हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। हमें परमेश्वर के आत्मा से भर जाना है। हमें संसार में गवाह बनना है। आज ये उसकी आज्ञाएं हैं कि हम जीवित मसीह यीशु से जुड़े होने के कारण ऊंचे स्तर पर जी रहे हैं। हमारे मन में और जीवन में आत्मा का फल प्रकट होना है। ये सब धार्मिक पंथ उस पराई स्त्री के समान है जो सड़क पर उस युवक को चिकनी चुपड़ी बातें करती है। वह स्त्री पुरुषों को पुकारती है। वह व्यस्त है। वह हर जगह आपसे भेंट करती है। वह एक वेश्या है। वह आपको प्रभु यीशु से अलग करना चाहती है। मेरे मित्रों, सड़क की यह पराई स्त्री रेडियो और टीवी द्वारा आपके घर में भी आ जाती है और आपको ललचाती है। कहा गया है कि उसके साथ चलना ऐसा है जैसे बैल कसाई खाने को। काश हम मसीह यीशु की अपेक्षा किसी और से आस्था न रखें। मेरे विचार में यह धार्मिक पंथों का सबसे अच्छा चित्रण है। वेश्या के समान वे श्रृंगार से पूर्ण हैं, आकर्षक हैं, ललचाते हैं और नरक ले जाने वाली बातें सुनाते हैं। यीशु हमारे प्राण से प्रेम रखने वाले से हमें दूर ले जाते हैं। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 7 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 8 में देखेंगे। अब यह युवा अनेक महाविद्यालयों के प्रोस्पेक्टस देख रहा है, जिनमें बुद्धि का स्कूल भी है और मूर्खता का स्कूल भी। इस अध्याय में बुद्धि उसे पुकार रही है। उसकी पुकार आपातकालीन है। उस युवक पर अब दबाव है। स्कूल का घंटा बजेगा और उसे किसी न किसी स्कूल में जाना ही होगा। तो आइए हम देखेंगे युवक को बुद्धि की पुकार। नीतिवचन अध्याय 8 उसके 1 पद में लिखा है, क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है? हमने देखा है कि युवक को ललचाया गया है कि वह बुद्धि की पाठशाला छोड़ दे। मेरा विश्वास करें कि धार्मिक पंथ सड़कों पर घूम रहे हैं और आपका द्वार खटखटा रहे हैं। परमेश्वर के लोगों को भी आज सड़क पर ऐसा ही करना चाहिए। मैं कुछ संस्थाओं के लिए वास्तव में मन से आभारी हूं कि वे युवाओं में सेवा कर रही हैं। वे घर घर जाते हैं। वे अपने जीवन से गवाही देते हैं। यह एक अति उत्तम काम है। बुद्धि और समझ की वाणी सुनाई देती है। नीतिवचन 8 उसके 2-4 पद में लिखा है, वह तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की एक ओर और तिरमुहनियों में खड़ी होती है। फाटकों के पास नगर के पैठाव में और द्वारों ही में वह ऊंचे स्वर से कहती है, हे मनुष्यों, मैं तुमको पुकारती हूँ और मेरी बात सब आदमियों के लिए है। मेरे मित्रों, हम रेडियो के माध्यम से यही करने का प्रयास कर रहे हैं। हम आप तक परमेश्वर के वचन को पहुंचा रहे हैं। हम बुद्धि के स्कूल में आने का निमंत्रण भेज रहे हैं। हम आपको मसीह के रूप में बुद्धि के पास बुलाते हैं। प्रभु यीशु हमारे लिए ज्ञान है। मेरे प्रिय मित्रों, आइए आज हम सब मिल करके इस बुद्धि की पुकार को सुने और बुद्धि के स्कूल में आने का यत्न करें, ताकि हमारा जीवन विनाश से बच जाए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज आपने परमेश्वर के वचन में सुना है, उसकी महान गवाहियों को जाना है। आइए हम अपने जीवन में एक सही निर्णय लें और परमेश्वर के लिए जीवन जिए। यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
गाएंगे हम यीशु के लिए सदा, हे हे, गाएंगे हम यीशु के लिए सदा, ले जाएगा यीशु मुझको है पता, ठंडे पानी की नदियां है जहां, चरवाहा यीशु है तो फिक्र क्या, ले जाएगा राजा राजा। Bye.